हरे कृष्णा।
ठाकुर भक्तों ने आगे बताया है ये जो दसवां नाम अपराध है, इसके बाद उन्होंने एक और अपराध साथ में बताया जो कि दसवें नाम अपराध के साथ ही जुड़ा है। जिसको
थोड़ा वॉल्यूम कम कर सकते हैं, ज्यादा हो।
इन अटेंटिव चैंटिंग, इसको प्रमाद भी कहा गया है। प्रमाद, प्रमाद का मतलब है एक तरह का पागलपन। जब हम लोग देखते हैं कि कहीं मन आपका कहीं और भाग रहा है, मन एक जगह स्थिर नहीं हो पा रहा है, मन को एकाग्रचित नहीं कर पा रहे हैं आप, मन को एक विषय वस्तु में ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, एक तरह का ये प्रमाद ही है। और हरिनाम लेते हुए अगर किसी अन्य विषय वस्तु के प्रति आकर्षण रहता है, भौतिक विषय वस्तुओं के प्रति आकर्षण रहता है, इसको डिस्ट्रैक्शन कहते हैं अंग्रेजी में, व्यवधान। और भक्तों ठाकुर कहते हैं कि सभी अपराधों का मूल कारण ये है, जितने भी अपराध होते हैं उसका मूल कारण ये है, इन अटेंटिव चैंटिंग। तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, भक्तों ठाकुर ने जैसे बताया। तो डिस्ट्रैक्शन इन चैंटिंग, हरिनाम चिंतामणि में भक्तों ठाकुर लिख रहे हैं, जब व्यवधान होता है और हम लोग हरिनाम लेते हुए हमारा मन भटकता है, या हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हरिनाम लेते हुए, तो वो एक प्रकार का भ्रम पैदा करता है और हरिनाम के प्रति अपराध होता है। और ये भ्रम हमारा आकर्षण बढ़ाता है, पुरुष का आकर्षण होता है स्त्री से, अगर स्त्री हरिनाम ले रही तो उसका आकर्षण होता है पुरुष से, धन से, लाभ पूजा प्रतिष्ठा से। और इस तरह से क्या होता है, जब हमारा हृदय भौतिक आकर्षण से भर जाता है तो हरिनाम के प्रति हमारा आकर्षण कम होने लग जाता है। प्रभुपाद ने एक जगह बोला, प्रभुपाद के एक लेक्चर से लिया गया है, इफ यू बिकम इनअटेंटिव दैट इज ऑफेंस, वी शुड नो दिस, ट्राई टू अवॉइड। कृष्णा इज गिविंग अवर चांस टू मीट हिम इन सो मेनी वेज, नाम रूप लीला परिकर वशिष्ठ। तो कहने का मतलब है कि हमें मौका दे रहे हैं कि अपनी लीलाओं का और अपने रूप का, अपने गुणों का हमें आस्वादन करने का मौका दे रहे हैं, तो हमें हमारे मन को नाम जप में लगाना चाहिए, अन्य विषय वस्तुओं में नहीं। ये प्रयास करना चाहिए कि हमारा मन ना भटके। तो इसको प्रमाद कहा गया, एक तरह का पागलपन कहा गया है। कि पागलपन क्या है, कि आपने कृष्ण को न्योता दिया, कृष्ण को निमंत्रण दिया, और जब कृष्ण आए तो आपने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। जैसे आप समझ लीजिए, घर पे आप किसी को इन्वाइट कर रहे हैं डिनर के लिए, और वो व्यक्ति बैठ गया आगे, वो ड्राइंग हॉल में बैठा आपके, और आप बैठे हैं कहीं बेडरूम में, और भाई निकल रहे आप, तो उस व्यक्ति के लिए क्या हुआ, अपमान नहीं हो गया, अपराध नहीं हो गया उस व्यक्ति के प्रति, इंसल्ट नहीं हुआ। तो इसी को कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। महामंत्र का जप कर रहे हैं, हरिनाम का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन हरिनाम का उच्चारण कर रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है, आपने बुलाया, कृष्ण बोलते हम चले आए, लेकिन फिर आपने ध्यान नहीं दिया उनका, तो ये अपमान नहीं हुआ, तो क्या हुआ कृष्ण का, है कि नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, तो कृष्ण आते हैं और बोलते हैं ठीक है सब सेवा करिए, बताइए, नहीं मैंने आपको तो नहीं बुलाया, तो ये पागलपन नहीं तो क्या है, इसीलिए इसको प्रमाद कहा गया है। प्रमाद, तो इसका ये तीन प्रकार के ये व्यवधान बताए गए हैं। पहला बताया गया है उदासीनता, इसको अंग्रेजी में अपेक्षी कहते हैं, इनडिफरेंस। तो यहां बता रहे हैं, द हार्ट ऑफ अ न्यूफाइड डिवोटी इज यूजली इन्फेस्टेड विद मेनी मटेरियल अटैचमेंट्स, एट दैट टाइम ऑफ चैंटिंग ही विल फील अ स्ट्रांग अट्रैक्शन टू देम, एंड दिस विल प्रिवेंट हिम फ्रॉम पुटिंग हिज हार्ट इनटू द होली नेम। even if he chants 64 rounds, he will still remain apathetic and derive no taste from chanting. For the indifferent chanter, it is a Herculean task to complete 16 rounds without interruption.
यानी कि जब भौतिक आसक्तियां होती हैं हमारे, तो फिर बहुत मुश्किल होता है हरिनाम में ध्यान लगाना. भौतिक आसक्ति वास्तव में सबसे बड़ी बाधा है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए. आसक्ति ही वास्तव में हमें संसार में दोबारा लेकर आती है, और यही आसक्ति जब कृष्ण के चरणों में हो जाती है तो फिर हम भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं. तो आसक्ति को त्यागना पड़ेगा. लेकिन हमारा सिद्धांत क्या है, ना हमें आसक्त होना है और ना अनासक्त होना है. यह है युक्त वैराग्य, यानी कि उन सभी विषय वस्तुओं को स्वीकार करना है भगवान की सेवा में जो लगाया जा सकता है. फिर गोस्वामी कहते हैं, अनासक्तस्य विषयान यथारम उपयंजिता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते. प्रापंच कृत बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्याग फल्गु वैराग्यम कथ्यते. तो श्री गुरु गोस्वामी ने कहा है कि कोई अगर ऐसे वस्तुओं का परित्याग कर देता है जो कि कृष्ण की सेवा में लगाया जा सकता है, तो ऐसा वैराग क्या है, फल्गु वैराग है. तो इस प्रकार विरक्ति का अर्थ है कि सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना, सभी विषय वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना, यह वास्तविक विरक्ति. और ये यहां बता रहे हैं कि अगर इस प्रकार का उदासीनीय होता है, इनडिफरेंस, मतलब कि हम हरिनाम ले रहे हैं लेकिन वास्तव में कोई हम खास इसमें इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि जबरदस्ती आपको बिठा दिया गया. कई बार ऐसे भक्तों को देखा गया कि जबकि समय बिठाया भी जाता है उनको, अगर तो वो ऐसे बैठे होते हैं जैसे कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो शो कर रहे हैं, एक इनडिफरेंस शो करते हैं वो, और या तो दीवार के सहारे ऐसे बैठे रहते हैं और थोड़ा इधर उधर देखते रहते हैं, उनका मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी, लेकिन आपने कह दिया इसलिए वो बैठे हुए. तो इस तरह से तो ये जो है, इस कारण से कभी भी बहुत मुश्किल जाता है ऐसे लोगों के लिए 16 माला का जप करना भी, और 64 माला भी अगर करें तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा. तो इसका यहां पर सोल्यूशन बताया गया है, इसका हल बताया गया. इसका हल ये है कि उन्नत वैष्णवों के साथ बैठकर जप करना चाहिए. ध्यानपूर्वक जो जप करते हैं उन भक्तों के साथ बैठकर जप करना चाहिए, फिक्स डिवोटीज के साथ. प्रभुपाद यूज करते थे अक्सर शब्द जो फिक्स्ड हैं डिवोशन सर्विस में, फिक्स्ड अप हैं डिवोशन सर्विस में, उनके साथ बैठ के जप करने से हमारे अंदर भी ये भावना आएगी कि हम लोग भी इस तरह से जप करें, क्योंकि उनकी प्रेरणा से हम भी अपने मन को स्थिर बना पाएंगे. तो ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग ऐसे भक्तों के सानिध्य में रहकर जप करें. और आप ऐसे स्थान में हैं जहाँ पे आपको ऐसे उन्नत वैष्णवों का सानिध्य प्राप्त नहीं होता है, आप घर पे हैं या अपने ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ पर कोई भक्त है नहीं, तो वहाँ पर आप तुलसी महारानी के पास बैठ कर जप करें, प्रभुपाद जी का जप चला सकते हैं साथ में, प्रभुपाद जी का जो कैसेट है जप का वो चला सकते हैं. तो इस तरह से हम लोग कई प्रकार से प्रयास कर सकते हैं ध्यानपूर्वक जप करने का. और धीरे धीरे क्या होगा कि जो हरिनाम का जो माधुर्य है, जो हरिनाम की मधुरता है, उसका क्रमशः हम लोग आस्वादन कर पाएंगे. तो यहां पर भी लिखा है, इसी किताब में भी यही लिखा है कि तुलसी महारानी के समक्ष या धाम में लीला स्थलियों में मंदिर में जप करने से ज्यादा आसान होता है जप करना. अगर मान लीजिए आप अपने कमरे में चले जाते हैं जप करने के लिए, तो फिर क्या होता है, नींद आ जाती है कि नहीं? आप ऐसे कितने लोगों को नींद आती है कमरे में जाकर जप करते हैं, हम सबको आती है कि नहीं? इसका मतलब हम सब एक ही कंपार्टमेंट में है ना. तो एक साथ बैठकर अगर हम लोग मंदिर में जप करें, प्रयास करें, अगर रोज नहीं आ सकते हफ्ते में एक दो दिन आकर प्रयास करें कि भक्तों के साथ बैठकर जप करें, मंगल आरती तक नहीं पहुंच सकते तो जप के समय तक पहुंच जाए, तो जप को पहले ठीक कर लें 2 घंटे बैठकर. इस तरह से अपने साधना को ठीक करना चाहिए, क्योंकि बिना साधना के साध्य की प्राप्ति नहीं होगी. हम बातें बड़ी बड़ी कर लें लेकिन अगर साधना हमारी ठीक नहीं है तो साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती. और कलयुग में सबसे उत्तम साधन तो
हरि नाम है, हरि नाम संकीर्तन है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। जो ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप है ये हमारी व्यक्तिगत सेवा है, और हरि नाम संकीर्तन में भाग लेना ये हम सबकी सामूहिक सेवा है। तो इसलिए ये जो व्यक्तिगत सेवा है हमारी, तो उसको बहुत ध्यान से हमें स्वीकार करना चाहिए। और हरिनाम चिंतामणि में तो यहाँ तक बताया है कि उन लोगों के लिए है ये जो वास्तव में और भक्ति में आगे बढ़े हैं, वो ऐसे स्थान में जप करें जहाँ पर कोई किसी प्रकार का आपको डिस्टर्बेंस ना हो, कोई तंग ना करे आपको, ऐसे समय में जप करें जब वास्तव में सत्वगुण है, सात्विकता है। जैसे प्रातः काल का समय, रात्रि को जब करेंगे तो तमोगुण का प्रधान, तमोगुण की प्रधानता होती है। दोपहर में जब करेंगे तो रजोगुण की प्रधानता होती है। पेट भरने के बाद जब करेंगे तो नींद आएगी, है कि नहीं? प्रातः काल पेट खाली होता है, प्रातः काल सत्वगुण में सात्विक समय में जब करेंगे तो जब करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें प्रयास करना चाहिए इस अनर्थ से बचने के लिए, इस अपराध से बचने के लिए। दूसरा बताया जड़ आलस, आलस के कारण भी जो है हम लोगों को हरिनाम में आनंद नहीं आता है। और यानी कि आलस का मतलब यह है कि एक निष्क्रिय भावना से जप करना और जप करते समय बीच बीच में रोकना, जप कर रहे हैं फिर बीच में रोक रहे हैं और कुछ और कर रहे हैं। जैसे कि एक अनर्थ है, उस अनर्थ का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उस अनर्थ में क्या होता है कि आप जप कर रहे हैं और जप करते समय या श्रवण कर रहे हैं बीच में कुछ खाने का मन करता है आपको, जैसे कोई मीठा है तो मुंह में डालने का मन करता है, है ना? पास में कोई पेड़ा रखा है, पेठा रखा है, लड्डू रखा है, जप कर रहे हैं और बीच में लिया, मुंह में डाल दिया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वैसे तो हरिनाम में रुचि है नहीं, हरिनाम की मधुरता का आस्वादन नहीं कर पा रहे, है ना? क्योंकि हमारे शास्त्र बोला है तो हरिनाम तो मिश्री के समान है, तो ऐसी मधुरता का तो आस्वादन नहीं हो पा रहा है, तो चले कोई बात नहीं मिश्री डाल लूं मैं, वाह हरे कृष्ण कितना मीठा है हरिनाम, है ना? तो ये वास्तव में अपराध है, ठीक है ना? और इसका हल बताया, हल ये है कि वैष्णवों का हम लोग संग करें जो कि प्रजल्पा रहित है, बातें नहीं करते और हरिनाम लेते हुए निरंतर जप करते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, रविवार के दिन कम से कम हमें प्रयास करना चाहिए हफ्ते में एक बार कि हम सब मंदिर में आकर भक्तों के साथ बैठ के जो जप कर रहे हैं ध्यान से उनके साथ बैठ के जप करें। सबसे पहले देखिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या आवश्यक है, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या सोपान बताए गए हैं। श्री रघु गोस्वामी ने भक्ति रसाम सिंधु में बड़े विस्तार से इसका वर्णन किया है। तो ये बता रहे आचार्य, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य लोग, कि हमें अपनी साधना को बहुत अच्छा करना पड़ेगा, साधना को बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। जितने हम लोग अपनी वैदिक साधना भक्ति में गंभीर रहेंगे उतना हमारा मन पवित्र होता जाएगा। देखिए जितने महापुरुष ने शिक्षाष्टकम के पहले श्लोक में बोला है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महाग्नि निर्वापनम शैया कैलव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म सुपरम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काला एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव मिदृशम यहाजनी नानुरागा। तो ये चैतन्य महापुरुष की शिक्षा है। शिक्षाष्टकम जो है आठ श्लोकों में है, इन आठ श्लोकों में चैतन्य महापुरुष ने भक्ति की आठ सीढ़ियों का वर्णन किया है। श्रद्धा से लेकर प्रेम तक की व्याख्या चैतन्य महापुरुष ने आठ श्लोकों में कर दी है। स्वयं चैतन्य महापुरुष के द्वारा ये लिखा गया है, महापुरुष ने और कोई ग्रंथ नहीं लिखा। महापुरुष ने शिक्षाएं दी सनातन गोस्वामी को, श्री रूप गोस्वामी को, लेकिन अपने हाथ से उन्होंने केवल आठ श्लोक ही लिखे, लेकिन आठ श्लोकों में संपूर्ण वैदिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत किया चैतन्य महापुरुष ने। बाद में हमारे पूर्ववर्ती आचार्य श्री भक्तिनाथ ठाकुर, उन्होंने अपने पुस्तक भजन रहस्य में ऐसी शास्त्रों के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने बताया कि एक एक जो श्लोक है भगवान के, एक एक प्रहर में जो लीलाएं घटित होती हैं उसके तुल्य है, और भक्ति की एक एक सीढ़ी के बराबर है। श्रद्धा, भक्ति की पहली सीढ़ी क्या है? श्रद्धा है। तो सबसे पहले हमारी श्रद्धा हरिनाम में होनी चाहिए, और हरिनाम के द्वारा हमें क्या करना है? चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त के दर्पण का मार्जन करना है, सफाई करनी है। जैसे आज मंदिर की सफाई कई कई भक्तों ने है कि नहीं, जिन भक्तों ने सफाई की उनको आनंद आया, और जिन्होंने नहीं किया उनको भी आनंद आया होगा सुनकर, है ना, सुनकर आनंद आया होगा। तो ये सब चैतन्य महाप्रभु ने करके दिखाया है। तो हरिनाम संकीर्तन कलयुग में इतना प्रभावशाली है कि हमारे मन को बड़ी आसानी से साफ कर सकता है। जो जितना अधिक हरिनाम संकीर्तन में भाग लेगा वो उतना जल्दी पवित्र होगा। ये अगर कोई पूछे कि शॉर्टकट क्या है भगवत प्रेम प्राप्त करने का, तो शॉर्टकट कोई भी नहीं है, एक ही शॉर्टकट है, हरिनाम संकीर्तन। जितना अधिक आप हरिनाम संकीर्तन में भाग लेंगे उतना जल्दी आप भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। और हरिनाम संकीर्तन और साथ में स्वयं हरिनाम लेना, महामंत्र का जप करना ध्यानपूर्वक, तो इसे बहुत सावधानी से जप करना चाहिए। प्रातः काल गुरु से प्रार्थना करते हुए हम लोग गुरु अष्टकम का पाठ करते हैं, और उसके बाद फिर हम महाप्रभु का शिक्षा अष्टकम पढ़ते हैं, तुलसी आरती गाते हैं, तुलसी महारानी से प्रार्थना करते हैं। सब प्रार्थनाएं हैं, और प्रार्थनाएं क्यों कर रहे हैं हम लोग? ताकि ठीक ठीक हम लोग हरिनाम ले पाए, क्योंकि हरिनाम लेने से पहले अपने आप को हम तैयार करते हैं ये ठीक से हरिनाम लिया जा सके। इसके लिए गुरु से प्रार्थना करते हैं, है ना, गुरु और गौरांग से प्रार्थना करते हैं, तुलसी महारानी से प्रार्थना करते हैं, सभी वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, सभी वैष्णवों से प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पंचतत्व से प्रार्थना करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू करते हैं, है कि नहीं? कोई बोलेगा कि अगर हरिनाम ही साधन है तो मैं फिर जप के समय पहुंच जाता हूं, ये इस गुरु अष्टकम में भाग लेने की आवश्यकता है, यही है श्रेष्ठ साधन। श्रेष्ठ साधन जरूर है, लेकिन श्रेष्ठ साधन को सही ढंग से अपने आध्यात्मिक जीवन में उतारने के लिए हमें प्रार्थनाओं की आवश्यकता पड़ती है। बिना कृपा के, बिना प्रार्थना के हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। तो प्रार्थना हमें बहुत करनी चाहिए, कृपा की याचना करनी चाहिए। तो साधन भक्ति निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन साधन भक्ति का आधार है कृपा, गुरु और गुरांग की कृपा, गुरु परंपरा की कृपा, वैष्णवों की कृपा, अपराध रहित होकर हम लोग हरिनाम ले पाए, इसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और जब ऐसी प्रार्थना करके हम लोग हरिनाम का जब शुरू करेंगे, तब हम लोग में अंदर गंभीरता आएगी, हमारे अंदर गंभीरता आएगी। सबसे पहले हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए? हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हम महामंत्र का जप ध्यानपूर्वक जप कर पाए, और जप के समय हम सोए नहीं, जप के समय हम प्रजल्पा ना करें, सो जाना जप के समय, ये भी क्या है? जड़ है, ये भी लेजीनेस है, आलस। सोने के लेकिन कई कारण भी हो सकते हैं। एक तो रात को आप देर से सो रहे हैं तो आपको जप में नींद आ रही है कि नहीं, और दूसरा सोने का कारण हो सकता है कि आरामदायक स्थान पर बैठकर जप करना, जैसे एसी चला लिया, है ना, ठंडा कर लिया कमरे को और जप कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास नींद आएगी, है कि नहीं? हरिनाम लेते वक्त हमें ऐसे वातावरण में जप करना चाहिए जहां पर हम हरिनाम ठीक से ले पाए। बहुत ज्यादा अगर ठंडा होगा, बहुत ज्यादा अगर गर्म होगा, तो दोनों ही हमारे लिए अनुकूल नहीं होगा। तो वातावरण का भी प्रभाव हमारी चेतना पर पड़ता है। हमें प्रयास करना है कि निद्रा ना आए, रात को देर से भोजन करना, भर पेट हो भी, और विशेष रूप से अन्न का प्रसाद ग्रहण करना रात्रि के समय, तो उससे क्या है, पेट में पड़ा रहता है वैसे, ठीक है, पूरी तरह से पचता नहीं है, और जब पूरी तरह से पचता नहीं है तो फिर क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है, और धीरे धीरे गैस बनता है, फिर वो धीरे धीरे गैस आपके पूरे शरीर में घूमता रहता है, उसको निकलने का रास्ता नहीं मिलता, वो सीधा पहुंच जाता है सर पे, और जैसे आप हरिनाम लेते हैं तो फिर शुरू हो जाता है उसका सर। क्योंकि हरिनाम लेते क्या होता है, सारा तमोगुण बाहर निकलता है, तो उस समय क्या है, फिर हमें नींद आती है। तो ये जड़ अवस्था है, और हमें उत्साहित भक्तों के साथ रह के जो समय व्यर्थ नहीं गवाते हैं और ध्यान पूर्वक जप करते हैं। देखिए, हम सबको मार्गदर्शन की आवश्यकता है, हमें तो किसी ना किसी भक्त के सहारे की आवश्यकता है, गुरु और वैष्णव के सानिध्य में रहकर। देखिए, भक्त को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि मुझे किसी की आवश्यकता है, किसी भक्त से मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हम जैसे सोचते हैं हम स्वतंत्र हैं, हमें कोई आवश्यकता नहीं है सिखाने की, है ना, सीखने की, और हम अकेले में जाकर जप कर सकते हैं, निर्जन भजन करेंगे हम लोग। तो निर्जन भजन में क्या होता है, अधिकांश सो रहे होते हैं लोग, हमने देखा है वृंदावन धाम में देखा है, पूरे निर्जन भजन करने जा रहे हैं और सो रहे हैं कुटिया में, है ना, कई बार तो खराटों की आवाज भी आती है। तो ये निर्जन भजन जो है ये कलयुग में लगभग असंभव है, तो इसलिए हम लोग मामाचार्य हरिदास ठाकुर की नकल नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, भक्तों के सानिध्य में रहकर जप करना चाहिए, और उन भक्तों के सानिध्य में रहकर जो उत्साहित हैं। तीसरा बताया है विक्षेप, विक्षेप का अर्थ भी वही है व्यवधान, डिस्ट्रैक्शन। इसका इसको कैसे, इससे कैसे हम लोग बचें, डिस्ट्रैक्शन है क्या, डिस्ट्रैक्शन की बता रहे, विक्षेप से क्या होता है, भ्रम पैदा होता है और कई प्रकार के अपराध होते हैं, लाभ पूजा प्रतिष्ठा, जैसे कि एक अनंत बताया विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने भी माधुरी कादम्बनी में, उसको कहते हैं भक्ति उत अनर्थ, या फिर उन्होंने एक जगह बताया तरंग रंगनी। इसका अर्थ यह है कि भक्ति जब करेंगे तो स्वाभाविक है कि आपका यश फैलेगा, आप नहीं भी चाहेंगे तो लोग आपकी प्रशंसा करने लगेंगे, गुणगान करेंगे, आपकी तपस्या को देखकर, आपकी साधना को देखकर, आपके प्रचार को देखकर, आपकी सेवाओं को देखकर, आपके समर्पण को देखकर लोग प्रशंसा करेंगे। लेकिन अगर हम इस जाल में फंस जाएंगे तो क्या होगा, ये अनर्थ पैदा करता है, इसको कहते हैं भक्ति उत अनर्थ, भक्ति उत अनर्थ, यानी कि भक्ति करते हुए अनर्थ पैदा हो रहे हैं, या इसको तरंग रंगनी कहा जाता है, रंगनी का मतलब वेव्स, है ना। तो क्या होता है कि तरंग रंगनी में क्या होता है कि जब हम भक्ति करते हैं तो जब लोग प्रशंसा करते हैं तो अगर उस प्रशंसा को स्वीकार कर लेते हैं, उसको अगर प्रशंसा को स्वीकार करके वापस लौटाते नहीं और उसको केवल स्वीकार कर लेते हैं, अंदर से एक बहुत सूक्ष्म रूप से सुख की अनुभूति होती है, वाह क्या बात, कितने लोगों ने मेरी प्रशंसा की कि मैं ध्यान पूर्वक जप करता हूं, है कि नहीं, कितने लोगों ने प्रशंसा की कि आपकी साधना बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसको, इस अनर्थ को कहते हैं तरंग रंगनी। जब हम लोग ऐसे सुख को स्वीकार, बंद कर दीजिएगा, स्विच ऑफ कर दीजिए प्लीज, तो सुख की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है, तो इससे हमें बचना पड़ेगा लाभ पूजा प्रतिष्ठा से। और बचने का तरीका क्या है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा से बचने का, वैष्णव की शरण में जाना। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि मेरे मन में, मन को शिक्षा दे रहे हैं, देखिए सारे अनर्थों से तुम बच गए, लेकिन इस मन में यश रूपी चंडालनी नृत्य कर रही है, उसको कैसे निकाल के फेंकोगे बाहर, और यश की तुलना उन्होंने चंडालनी से की है। तो बोलते हैं इसको निकालने का केवल एक ही तरीका है कि उन वैष्णों के पास जाओ जो कि कृष्ण की सेवा में तत्परता से लगे हुए हैं, वो वैष्णव क्या कर सकते हैं, उन्हीं के पास क्षमता है जो यश रूपी चंडालनी को निकाल के बाहर फेंक सकते हैं, यानी कि गुरु की चरण शरण में जाओ, वैष्णव की शरण में जाओ, जितना गुरु कहते हैं जितना वैष्णव कहते हैं उतना प्रचार करो, उतनी सेवा करो, तो हम बचे रहें। हमको रक्षा की आवश्यकता है, हम कोई सिद्ध पुरुष नहीं है, हम सब बद अवस्था में हैं, तो हमें रक्षा की आवश्यकता है, हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं खतरे में हूं, और अगर कभी भी हम अपराध कर बैठेंगे तो अपराध का फल मुझे ही भुगतना पड़ेगा, है ना, ऐसा नहीं कि मैं अपराध कर रहा हूं और कोई भुगतेगा उसके लिए, तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। और यहां पर बताया गया है भक्तिनाथ ठाकुर, श्रील भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर ने हरिनाम चिंतामणि जो है ग्रंथ लिखा था जगन्नाथपुरी में। आज प्रातःकाल हमारे पास इतना समय नहीं मिला, भक्तिवेदांत ठाकुर ने ये ग्रंथ लिखा हरिनाम चिंतामणि शायद 1903 में। और ये जहाँ पर हमारा इस्कॉन का मंदिर है जगन्नाथपुरी में स्वर्ग द्वार में, उसी जमीन पर भक्तिवेदांत ठाकुर का भजन कुटीर था। जिस जमीन पे हमारे इस्कॉन का मंदिर बना है उसी जमीन पर ठाकुर भक्तिनाथ ने अपना भजन कुटीर बनाया था। तो वो इत्तेफाक से इस्कॉन को मिल गई वो जमीन और वही मंदिर बन गया। इसलिए प्रभुपाल के साथ में ये एक इस्कॉन का मंदिर है जिसमें साथ में भक्तिवेदांत ठाकुर भी बैठे हुए हैं। भक्तिवेदांत ठाकुर एक तरफ बैठे हैं, एक तरफ प्रभुपाल बैठे हैं, और सामने राधा माधव है, शायद वहां पे भी राधा माधव का विग्रह है ना, और महाप्रभु के साथ में। तो और बिल्कुल हमारे मंदिर के सामने यानी भक्तिवेदांत ठाकुर की भजन कुटिया थी वहां पे पहले, तो भक्तिवेदांत ठाकुर के भजन कुटिया के बिल्कुल सामने नवाचार्य हरिदास ठाकुर की समाधि है, बिल्कुल सामने है। तो ये बहुत ही पवित्र स्थान है और बिल्कुल बाई तरफ वहां पर श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने, उन्होंने एक गौड़िया मठ की स्थापना की जहां पर कई बार श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर आके रहते हुए थे, है ना। तो एक तरफ हरिदास ठाकुर हो गए, एक तरफ भक्तिवेदांत ठाकुर हो गए, एक तरफ श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर हो गए और प्रभुपाद भी आ गए बाद में। ये जगन्नाथपुरी की बात। तो वह इसी स्थान में भक्तिवेदांत ठाकुर ने हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ लिखा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है भक्तों के लिए और उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। भक्तिवेदांत ठाकुर ने बताया है कि कैसे बचा जाए इस व्यवधान से। उन्होंने बताया कि हम लोग नाम के प्रति आकर्षण बढ़ा सकते हैं अगर हम उत्साहित पूर्वक उत्सवों में फेस्टिवल्स में भाग लें, जैसे आज गुंडीचा मंदिर महाजन का उत्सव था। तो ये हमारे पास अवसर होता है जब हम उत्साहित होकर मंदिर में आके सफाई करें, हरिनाम संकीर्तन में भाग लें, भक्तों के साथ नृत्य करें, कीर्तन करें, तो इससे क्या है हमारा हरिनाम के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। जैसे एकादशी का दिन, एकादशी के दिन हमने सुना कि पंजाबी बाग मंदिर में अब तो उन्होंने हर एकादशी में लगभग 100 भक्त होते हैं और लोग पूरी रात जागरण करते हैं हर एकादशी में उन्होंने बनाया हमने। सिर्फ निर्जल एकादशी में नहीं, निर्जल एकादशी में तो 400 भक्त आए थे कह रहे वहां, और पूरी रात वो लोग संकीर्तन करते रहे, कथा करते रहे। तो इस प्रकार दृढ़ संकल्प होना चाहिए। देखिए हमें ये सोचना है, हमें देखना है कि कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ सके। अगर हम लोग भक्ति में आगे बढ़ने के लिए विचार नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं और मशीन की तरह काम करते रहेंगे तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बैठकर विचार करना होगा। इसलिए हम साधु संग करते हैं, इसलिए वे क्लासेस भी करते हैं। ये क्लासेस इसलिए नहीं करते कोई मनोरंजन हो रहा है कि कोई सीढ़ी तैयार हो जाए फिर सीढ़ी का सर्कुलेशन हो, है? तो ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए कथा करने का। कथा का उद्देश्य होना चाहिए कि विचार मंच है और यहां हम लोग एकत्रित हुए हैं ये विचार करने के लिए कि हम सब मिलकर भक्ति में कैसे आगे बढ़े। इसलिए हम लोग मिलकर एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं यहां पर। और हमें सोचना है कि हम यहां पर आ रहे हैं, इतनी दूर से आ रहे हैं, क्लास में बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, अब हमें अगला कदम क्या उठाना है। एकादशी के दिन क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? पंजाबी बाग मंदिर में कैसा होता है, वहां कैसे कर पाते हैं वो, यहां क्यों नहीं कर पाते हम? कुछ तो होगा कारण। तो इस वजह से हमें विचार करना चाहिए और फिर हमें प्रेरणा लेना चाहिए। जैसे हमें पंजाबी बाग मंदिर में सुना तो हमें प्रेरणा मिली, बहुत प्रेरणा मिली हमें, बड़ा अच्छा है तो कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं। बोलते हैं हम कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते, या आप कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते, कहने का अर्थ यह है। तो कहने का अर्थ यह है कि हमें इस प्रकार से गंभीर बनने के लिए योजनाएं बनानी चाहिए। एकादशी के दिन रात को जागना, पूरी रात कीर्तन करना, हरिनाम संकीर्तन करना, कृष्ण कथा करना और प्रातःकाल फिर उसके बाद पारण करना, फिर देखिए कितना लाभ मिला है। हाँ आप में से ये है कि एक बात तो है, कई लोग आप में से जॉब कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, अब मुझे नहीं पता कि वहाँ कैसे ये लोग करते हैं हर एकादशी में, क्योंकि बाहर से भी लोग आते हैं काफ़ी। मंदिर में तो मुश्किल से 15-20 भक्त हैं, बाकी लोग सब तो बाहर से आते हैं। लेकिन वो भक्त हैं जो भक्ति में बहुत गंभीर हैं, अब वो कैसे आते हैं मुझे पता नहीं, पूछना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर भी बाहर जॉब ही करते हैं लोग, जितने भी लोग हैं या बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें विचार करना होगा। एकादशी का उत्सव, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, ठीक है, ये सब उत्सव है जिसमें हम लोग, वैष्णवों का उत्सव है ये, और हरि जागरण किया जा सकता है इसमें। जन्माष्टमी के दिन अर्धरात्रि तक जागना सेवा ही सेवा होती है यहाँ पर, तो है कि नहीं? तो ना चाहें भी तो आप सो नहीं सकते, चाहें भी तो नहीं सो सकते चाहें भी तो नहीं सो सकते आप, दो तीन बजे तक जागते हैं भक्त लोग, कई भक्त, और फिर उसके बाद उसने आप क्या सोना, फिर उसके बाद नहा के धो के मंगल आरती में पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन व्यास पूजा का उत्सव होता है ना प्रभुपाद जी का, तो उसके लिए फिर उधर भागते हैं, फिर दोपहर प्रसाद लेते हैं, उसके बाद फिर नींद आती है सबको, सब उधर उधर कोने में पड़े होते हैं हाँ, फिर उसके बाद हम लोग एक दिन छूटता है, एक दिन के बाद फिर महाराज की व्यास पूजा आ जाते है ना। तो ये उत्सव इसलिए आते हैं ताकि हमें और ज्यादा सक्रिय बनाने के लिए, और अधिक कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए, और हमारी चेतना को जगाने के लिए। तो ऐसे उत्सव में हमें भाग लेना चाहिए। जैसे कई लोग हैं एकादशी में निर्जल भी रखते हैं, पंजाबी बाग में मैंने सुना है कई भक्त लोग वहां पर निर्जल रखते हैं, है ना, हाँ अमोक लीला प्रभु निर्जल रखते हैं कह रहे हैं, ऐसे कई भक्त निर्जल रखते हैं, रुक्मिणी कृष्णपुर रखते हैं, सीतावनपुर रखते हैं, कई भक्त रखते हैं निर्जल रखते हैं, और साथ में जागरण भी करते हैं, तो प्रेरणा मिलती है। तो इस तरह से जो रख सकते हैं निर्जल उनको रखना चाहिए, जो नहीं रख सकते ना रखे, लेकिन जो रख सकते हैं उनको निश्चित रूप से रखना चाहिए, नहीं तो मनुष्य जीवन बार बार थोड़ा मिलेगा, पशु की योनि में थोड़ा निर्जल करोगे है? तो है, तो यहाँ हमारे मंदिर में कुछ भक्त करते हैं, हाँ मसुनर प्रो करते हैं, एक दो भक्त और करते हैं, लेकिन साथ में सेवा भी बहुत जरूरी है। निर्जल का मतलब ये नहीं है कि हम खटिया बिछा के सो जाएं, है ना, निर्जल का मतलब ये है कि हमें फिर लगातार श्रवण कीर्तन करना पड़ेगा, तब तो निर्जल का कोई लाभ है, नहीं तो जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने जब उनके मठ में मंदिर में जब एक निर्जल के एकादशी के दिन, एकादशी के दिन वैसे प्रभुपाद तो बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं इसका, प्रभुपाद से एक प्रश्न पूछा तमाल कृष्ण महाराज ने कि प्रभुपाद हमने सुना है भीमा एकादशी है, इसको भीमा एकादशी भी कहते हैं, उस दिन निर्जल करना चाहिए, टोटल फास्ट करना चाहिए पानी से, तो प्रभुपाद कहते हैं भीमा हो या अर्जुन हो एकादशी मीन फास्टिंग। तो फिर प्रभुपाद से बोलते हैं कि प्रभुपाद अगर कोई फास्टिंग कर सकता है, अगर निर्जल रख सकता है तो अगर रखे वो, प्रभुपाद कर सकते हैं, प्रभुपाद कहते हैं हाँ करो लेकिन सोना नहीं, है ना, क्योंकि फिर प्रभुपाद कहते हैं कि सेवा ज्यादा आवश्यक है, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप कुछ फल इत्यादि लेकर आप सेवा कर रहे हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी तरह से भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर ने क्या किया, उन्होंने देखा कि कई भक्त लोग सो रहे हैं निर्जल रखे, तो सबको उठाया और उन्होंने कहा इन सबको प्रसाद खिलाओ और सब जाएं प्रचार में, ठीक है ना। तो एकादशी का उद्देश्य यही है कि हम लोग अधिक से अधिक श्रवण कीर्तन करें। तो कृष्ण कथाओं को सुनते हुए हरि कथा को सुने, हरिनाम संकीर्तन में भाग लें, तो इससे हमारा आकर्षण बढ़ेगा हरिनाम के जप में। तो प्रार्थना करने के लिए बताया गया इस प्रकार प्रार्थना की जा सकती है। आई डोंट चैंट वेरी वेल एंड आई कांट कॉन्सेंट्रेट टूडे, माई डिवियंट माइंड रिफ्यूजेस टू फॉलो माई डायरेक्शन, प्लीज हेल्प मी, प्लीज अलाउ मी टू टेस्ट द फुल नेक्टर ऑफ द नेम, विदाउट योर मर्सी देयर इज नो होप एट ऑल फॉर सच अ फूल एज मी। तो हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए प्रार्थना में बहुत शक्ति है, हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि निरंतर जाके जब भी हम भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो वहां तो अलग प्रार्थनाएं करते ही हैं। रोज हम लोग कब जाते हैं, सुबह के समय जाते हैं, ये कई बार सुबह के जाते हैं, सुबह के समय जाते जाते हम लोग बड़े मैकेनिकल हो जाते हैं, है कि नहीं? तो हमें अलग से भी कभी कभी जाना चाहिए मंदिर, जब कोई ना हो। जैसे कि मान लीजिए 12:30 की आरती में बहुत कम लोग होते हैं, 4:15 की आरती में बहुत कम लोग होते हैं, ऐसे समय में जाएं जब बहुत कम लोग और आप हो और राधा पार्षदी के घर से बिगड़े हो, उनके समक्ष जाके हम प्रार्थनाएं करें, हृदय की प्रार्थनाएं, मन की समस्याएं राधा पार्षदी को बताएं कि मेरे साथ इतने अनर्थ हैं, मेरा जब ठीक नहीं होता है, मैं अनर्थों से लड़ रहा हूँ, मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ, मेरे से सेवा नहीं होती है, तो ये सब राधा पार्षदी के साथ जाके हमें बातचीत करने चाहिए। प्रार्थना करने का मतलब ये भी है कि हम लोग अपनी समस्याओं को बताएं। एक तो वैष्णवों को जाके बताना भी चाहिए, वो ये वहां ख्याति पृछति, और दूसरा अर्चे वगैरह के समक्ष जाकर भी अपने समस्याओं को बताएं। लेकिन समस्या बताने का उद्देश्य क्या है? भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। ये नहीं समस्या का हल हो जाए और हम राधा पार्षदी को भूल जाए, है कि नहीं? हम ये बोले जाके कि मुझे धन नहीं मिल रहा है ना, तो इसके लिए राधा पार्षदी के लिए जा रहे हैं तो समय बर्बाद करेंगे उनका। तो इसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हम लोग साधन भक्ति में आगे बढ़ सके, इसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए जाकर। और आगे क्या बताया गया है, और ये बता रहे हैं कि अगर कोई सारा नवपराध का परित्याग भी कर दे और तब भी अगर वो मान लीजिए कि जब मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा है तो कभी भी वो नाम के प्रति आकर्षण नहीं जागृत कर पाएगा। लेकिन अगर कोई निरंतर उत्साहित पूर्वक हरि नाम का जप करता है ध्यान पूर्वक, तो बहुत जल्दी ही वो निष्ठा के स्तर पर पहुंच जाएगा। क्योंकि निष्ठा के स्तर पर पहुंचना सबसे कठिन कार्य है। आदो श्रद्धा तथा साधु संग अथवा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति से आ तथा निष्ठा। तो निष्ठा के स्तर पर पहुंचने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत यत्न करना पड़ता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। गुरु हमारी बहुत परीक्षा लेंगे, मतलब वैष्णव लोग हमारी बहुत परीक्षा लेंगे, इन सभी परीक्षाओं से गुजरना होगा। और जब सभी परीक्षाओं से गुजरेंगे और परीक्षा में सफल होंगे तो फिर हम देखेंगे कि समय आने पर हमारे सारे अनर्थ जो हैं दूर हो जाएं। निष्ठा का मतलब क्या है? निष्ठा का मतलब है निरंतर भजन क्रिया में, भजन में स्थिर होना, निरंतर गुरु की सेवा में स्थिर रहना, उसको कहते हैं निष्ठा। श्रवण कीर्तन में निष्ठा, सेवा में निष्ठा, है ना? तो निष्ठा के स्तर पर पहुंचना बहुत जरूरी है। सबसे पहले महामंत्र का जप करते हुए हमें चंचल नहीं होना चाहिए। चंचल का मतलब ये, चंचलता क्या है कि हम सोचें कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे अभी बाद में ऑफिस भी जाना है, ऑफिस में इतने सारे काम हैं, है ना, तो क्या चिंता करें उस समय? तो हमारे आचार्य लोग बोलते हैं, श्रील जी गोस्वामी ने कहा है कि केवल एक ही चिंता करनी चाहिए हमें, महामंत्र का जप करते समय मंत्र का जो अर्थ है उसकी चिंता करनी चाहिए। बस महामंत्र का अर्थ क्या है, मुझे आप अपनी सेवा में लगाइए, और साथ में शब्द ध्वनि को बड़े ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, और कोई चिंता नहीं करनी चाहिए हमें। क्योंकि आप कई बार बोलेंगे कि हम सेवाओं की चिंता कर सकते हैं क्या? हाँ, सेवाओं की चिंता करते करते क्या होता है, फिर हम और चिंताएं करने लग जाते हैं, कि मन बड़ा चालाक है हमारा, है ना। बोलेगा आप सेवा की चिंता तो कर सकते हो, तो आपसे एक सेवा की चिंता करेंगे, आज मैंने यहाँ प्रचार करना है, आज मैं इतने भक्तों को प्रचार करूंगा, आज मैं यहाँ प्रोग्राम में जाऊंगा, आज मैं ये सेवा करूंगा, उसके बाद फिर मन आपको कहीं और ले जाएगा, है कि नहीं? तो इस कारण से वो भी ठीक नहीं है, इसलिए हम केवल मंत्र के अर्थ के ऊपर चिंता करनी चाहिए। एक बार एक शिष्य ने, क्योंकि समस्या क्या है, हम सबकी समस्या क्या है, हमारा प्रश्न हमेशा ये होता है कि हमें कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होगा। तो प्रभुपाद से एक बार एक शिष्य ने पूछा कि हाउ विल इट बी पॉसिबल प्रभुपाद फॉर अ मैन हिज माइंड इज क्लाउडेड टू कॉन्स्टेंटली चैंट हरे कृष्णा, अ मैन इज ऑलवेज थिंकिंग थॉट्स अबाउट फैमिली फ्रेंड्स कंट्री एंड नेशन, वो कैसे महामंत्र का जप कर पाएगा जो हमेशा देश का चिंता कर रहा है, देश की चिंता कर रहा है, समाज की चिंता कर रहा है, परिवार की चिंता कर रहा है, अपने दोस्तों की चिंता कर रहा है, रिश्तेदारों की चिंता कर रहा है, है ना। जैसे कई बार जैसे आप जैसे जो गृहस्थ भक्त हैं उनके लिए हमेशा चिंता रहती है, जप कर रहे हैं बच्चा रो रहा है ना, तो उसको आप उसको चुप भी कराना है, साथ में जप भी करना है, है ना। सो जाओ हरे कृष्णा सो जाओ हरे कृष्णा बहुत दिक्कत है कि नहीं मेरा साश्रम में, तो ये सब समस्या है। तो ऐसे समय में आपको जब करना पड़ेगा कि जब आपकी संतानें जो है वो सो रही हो, है ना, अगर वो एक बार जाग गए तो फिर आप ध्यान भी लगाना चाहेंगे तो वो ध्यान लगाने नहीं देंगे, आपसे फीडबैक छीन लेंगे, है ना। क्योंकि बच्चों के लिए क्या है, वो चाहते हैं कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं पूरे घर में, है कि नहीं? बच्चे हमेशा चाहेंगे कि मेरे ऊपर ही ध्यान ले सबका, बच्चों की आदत होती है, स्वाभाविक होता है बच्चों के लिए। तो अगर आप जब कर रहे हैं आप ध्यान लगाना चाह रहे हरिनाम में, वो फीडबैक को पकड़ के खींचेगा, तो क्या ध्यान लगाओगे आप? तो इसलिए हरिनाम उस समय लेना चाहिए जब कोई घर में जागा ना हो, सब सो रहे हो, खासकर बच्चे सो रहे हो जब, और टीवी भी बंद हो, रिश्तेदार ना आए हो, और रिश्तेदार भी आए तो वो भी सो रहे हो, तो वही सबसे अच्छा था। तो ये सब आश्रम के ऊपर भी निर्भर करता है कौन से आश्रम में ये है। तो प्रभुपाद कहते हैं थिंक ऑफ बट एट द सेम टाइम चैंट। प्रभुपाद कहते हैं ठीक है, अगर विचार आ रहा है तो विचार करते रहो, लेकिन साथ में जब भी करो, टू थिंग्स विल गो ऑन, दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी, एंड दिस चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा विल कॉन्कर। लेकिन विजय किसकी होगी? हरे कृष्ण महामंत्र की विजय होगी। लेकिन अगर आप हरिनाम लेना छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो कोई और साधन है ही नहीं। As Maya forces you to drag you from the Krishna consciousness, you also force Maya by chanting Hare Krishna. Maya आपको force कर रही है कि आपको कृष्ण भावना से दूर ले जाना चाह रही है, माया अपना चिंतन करा रही है, तो आप क्या करो, आप भी माया को फोर्स करो, उसको भगाओ। कैसे भगाओ? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। देयर इज फाइट, प्रभुपाद कह रहे हैं देयर इज फाइट, अब युद्ध शुरू हो गया, एंड माया विल गो अवे, और माया जो है वो भाग जाएगी, डर के भाग जाएगी। तो इस प्रकार हमें प्रयास करना चाहिए। तो ये हम विराम देते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते, और भी काम है। ठीक है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। बहुत अच्छा प्रश्न है, निष्ठा के सर पर कैसे पता चलेगा कौन भक्त है? हाँ, निष्ठा के सर पर, निष्ठा का लक्षण है तृणादपि सुने चेन तरोग्रपि सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम बताया है, और ठाकुर भक्ति ने बताया है कि जो तीसरा श्लोक है ये निष्ठा का लक्षण बता रहा है। यानी कि कोई निष्ठा के स्तर पर है तो उसकी सहन शक्ति में स्थिरता आ जाएगी, और नम्रता में भी स्थिरता आएगी, और सदैव दूसरों को मान देगा और मान की इच्छा नहीं करेगा। और ये चार योग्यता है उस भक्त की जिसको मध्यम अधिकार प्राप्त हो गया है, मध्यम अधिकारी भक्त। निष्ठा का सर है, निष्ठा का सर का अर्थ है कि वो भक्त अब मध्यम अधिकारी बन चुका है। निष्ठा का अर्थ है जिसके ऊपर ज्ञान और कर्म का आवरण नहीं है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। मध्यम अधिकारी भक्त उत्तमा भक्ति कर पाता है क्योंकि उसके ऊपर ना ज्ञान का आवरण होता है, दुखों के कारण वो भक्ति नहीं कर रहा है, भय के कारण वो भक्ति नहीं कर रहा है, और कर्म मिश्रित भक्ति नहीं कर रहा है, यानी कि सांसारिक सुख के लिए वो भक्ति नहीं कर रहा है। ना ज्ञान का आवरण है, ना कर्म का आवरण है, हर प्रकार के पापों से वो मुक्त है। तो इस प्रकार जो ये चार योग्यताएं बताई गई हैं ये मध्यम अधिकारी भक्तों में होती है। तृणादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानि ना मान देना कीर्तने सदारे। और हमारा जो श्रीमद् भागवतम है उसमें भी बताया गया है, निष्ठा का सर बताया गया। क्या बताया गया है? ईश्वर तद अधिनेशु बाल शेषु दुशु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा। ये तो ये चार प्रकार के लक्षण बताए हैं श्रीमद् भागवतम में, कि नाम के प्रति आकर्षण होता है सबसे पहला, यानी कि भगवान की सेवा करता है वो प्रेम से, ठीक है, यानी कि नाम में रुचि। और दूसरा भक्तों से मित्रता बनाता है, और तीसरा जो निर्दोष हैं या जो कनिष्ठ भक्त हैं उनके ऊपर कृपा करता है, कनिष्ठ भक्तों को प्रशिक्षित करता है, उनके ऊपर करुणा दिखाता है, और जो निर्दोष हैं उनको दिव्य ज्ञान देकर उनको भी कृष्ण भक्ति में लगाता है। दुष्यस सुचा का मतलब है जो द्वेष करते हैं भगवान से उनसे वो दूर रहता है। तो ये चार योग्यताएं हैं जिससे पता चलता है कि कोई भक्त जो है निष्ठा के स्तर पर है या नहीं है, यानी कि मध्यम अधिकारी भक्त। निष्ठा का अर्थ हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि निष्ठा का अर्थ है जो निरंतर स्थिर रहता है भजन में, सेवा में, और विशेष रूप से गुरु की सेवा में निरंतर लगा रहता है, वो वास्तव में कौन, वो भक्त वास्तव में निष्ठा के स्तर पर है। क्योंकि इसी श्लोक में आखिर में क्या आता है, कीर्तनीय सदा हरि। तृणादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। ऐसा भक्ति सदा हरि नाम का कीर्तन कर सकता है, कौन? जो निष्ठा के स्तर पर है, मध्यम अधिकारी भक्त। भक्ति ठाकुर इसलिए लिखते हैं एक जगह पर जैन धर्म में, जो कभी कभी नाम लेते हैं वो कनिष्ठ भक्त है, जो हमेशा नाम लेते हैं वो मध्यम भक्त है, और जिनके दर्शन करने मात्र से हरिनाम लेने का मन करता है उत्तम वैष्णव है। सरल सी परिभाषा है। तो हम लोग हैं कभी कभी नाम लेने वाले, संख्या पूरी करने वाले भक्त, कि संख्या पूरी हो जाए बस, येन तेन प्रकार। तो भक्त ठाकुर से एक प्रश्न पूछा गया, लेकिन उन लोगों का कहना किया जो व्यवसाय में लगे हुए हैं और भी तो कार्य होते हैं इनमें, जैसे नाना धोना, कपड़े धोना, कई चीजें होती हैं। लेकिन अगर भक्त वास्तव में उन्नत होगा तो वो नहाते वक्त भी हरिनाम लेगा, कपड़े धोते वक्त भी हरिनाम लेगा, भोजन बनाते हुए भी हरिनाम लेगा, है कि नहीं, और बाहर वॉक में जाएगा तब भी हरिनाम लेगा वो। हाँ, कई परिस्थिति में नहीं ले पाते, जैसे अगर आप ऑफिस में हैं तो प्रैक्टिकल नहीं है वहां पर। लेकिन भक्त ठाकुर कहते हैं कि इन सब कार्यों को करने के बाद जैसे ही भक्त देखता है कि अब मुझे समय मिल गया है, उसका हाथ सीधा फिर से माला में जाता है और वो नाम लेना शुरू करता है। और हमने देखा है कई ऐसे भक्तों को, और अगर चाहेंगे कि हम भक्तों का दर्शन कराएं तो हम करा सकते हैं, ऐसे बहुत बहुत सारे हैं, है ना। जैसे ही आप देखेंगे उनका मौका मिलता है, एकदम माला करना शुरू कर देंगे। तो ये है कीर्तनीय सदाहरी का अर्थ भक्तों ठाकुर बोल रहे हैं। क्योंकि कोई बोलेगा प्रोजेक्ट तो ऑफिस में होते हैं, आप कहते हो कीर्तनीय सदाहरी, ये कैसे प्रैक्टिकल है? तो भक्तों ठाकुर ने बड़ा प्रैक्टिकल आंसर दिया, क्योंकि पता है कि कोई गृहस्थ आश्रम है तो व्यवसाय में जाएगा, वो नौकरी करेगा, पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी कॉलेज जाएगा, क्लास में बैठेगा थोड़ा जब करेगा। तो ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे विद्यार्थी निकलेगा कॉलेज से और वापस घर की ओर जाएगा तो हरिनाम लेते हुए जाएगा, अगर वो इस अवस्था में पहुंच गया तो, ठीक है। तो ये सब लक्षण बताए हैं। और थोड़ा दूर बैठ के जब करें फिर, है ना, अगर कोई जोर से जब कर रहा है तो उनसे नम्रतापूर्वक प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु जी थोड़ा सा धीरे जब करेंगे बस, वो मान जाएगा अगर वो अच्छा भक्त है। एक बार प्रभुपाद के पास बैठ के एक बार जोर से जप कर रहा था, तो प्रभुपाद ने कहा धीरे से जप करो, तो फिर भी नहीं माना वो, फिर से जप करने लगा जोर से। तो प्रभुपाद तीन चार बार बोल दिया प्रभुपाद ने, तो प्रभुपाद ने आखिर में बोला यू शुड नॉट डिस्टर्ब योर स्पिरिचुअल मास्टर बाय योर चैंटिंग, तब जाके वो चुप हुआ। तो कई बार आराम से बोलना पड़ता है, आराम से बोलते हैं नहीं सुनते लोग, तो आखिर में फिर जोर से बोलना पड़ता है। अगर वो नहीं सुनते आपकी बात तो किसी और वरिष्ठ भक्त के पास जाके प्रार्थना करेंगे प्रभु जी ऐसा हो रहा है, तो वो सहायता करेंगे।
जैसे हमें पता है कि अभी हमारा भौतिक आकर्षण और अभी नाम में भगवान सेवा में रुचि नहीं है, वी आल्सो नो द सॉल्यूशन इज कि दवाई भी यही है कि अच्छे से चैन करो, जैसे भागवत में श्रवण करें जी, ये सॉल्यूशन मेडिसिन जो हम लोग अपने
हाँ, मतलब इतना कुछ सुन लिया, इतनी हरिनाम की अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, ये तो दसाना अपराध है, आप बता रहे आप खुद ही बता रहे। तो साधु संग, भक्तों के संग में रहकर ये संभव हो पाएगा, अन्यथा संभव ही नहीं है, अलग से नहीं हो पाएगा। और ऐसे भक्तों का संग करना पड़ेगा जो आपको निकाल सके, इस चुंगल से निकाल सके, आसक्ति से आपको निकाल सके, ऐसे भक्तों का संग करना पड़ेगा तभी संभव हो पाएगा, नहीं तो मुश्किल है बहुत। क्योंकि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तब भी नहीं हो पा रहा है, सब सुन लिया, सब कुछ पता चल गया, फिर भी नहीं कर रहे हैं, आलस तो एक कारण है ही उसका, जैसे यहाँ बताया गया। लेकिन इन सबको दूर करने के लिए हमें हमेशा सहायता लेनी चाहिए, सबसे पहले तो हमें सहायता लेनी चाहिए, और ये भी प्रार्थना करनी चाहिए मेरे राधा पार्षदी के समक्ष जाके कि हम सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ हमने सुना, सब पढ़ा, और कई बार हमने सुन चुके हैं, फिर भी हमारे मन में भावना क्यों नहीं आ रहा, हम क्यों गंभीर नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो कई ऐसे पूर्व जन्म के संस्कार हैं दुष्कृत उत्थानार्थ जिसको कहते हैं या सुकृत उत्थानार्थ है, जो हमें गंभीरता नहीं लाने दे रहे भक्ति में। अनर्थों के कारण ही हम लोग भजन नहीं कर पाते और पाप कर्म के कारण। दुष्कृत उत्थानार्थ का मतलब है कि पाप कर्मों का जो फल भुगत रहे हैं, प्रारब्ध उसको कहते हैं, तो प्रारब्ध के कारण हम लोग कई बार भजन नहीं कर पाते ठीक से। तो इसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, वैष्णव की सेवा करते हुए, गुरु की सेवा करते हुए प्रार्थना करें और ऐसे भक्तों का संग करें जो उन्नत है, क्योंकि जब ऐसे भक्तों के संग में रहेंगे तो फिर वो सहायता करेंगे हमें, है ना। जैसे कई बार कई भक्त सहायता करते हैं, वो मंगल आरती के समय फोन कर देते हैं, उठा देते हैं, तो उनको बोलिए कि आप मुझे उठा दीजिए, फोन कर दीजिएगा, मैं मोबाइल ऑन रखूंगा। तो कहीं तो हमें हेल्प लेना पड़ेगा ना, है ना। हम बोले हम साफ चाहते भी हैं और हम हेल्प भी नहीं लेंगे तो फिर क्या कर सकते। हम गाड़ी भी सीखना चाहते हैं लेकिन हम गाड़ी में बैठेंगे भी नहीं, तो दोनों कैसे होगा। गाड़ी में बैठना भी पड़ेगा और साथ में एक सिखाने वाले को भी रखना पड़ेगा, बैठना ही काफी नहीं है तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो सिखाने वाला व्यक्ति भी साथ में होना चाहिए, वो सिखाने वाला व्यक्ति सिखाए और फिर हम गाड़ी चलाना सीखे तो सीख जाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है ना।
सिंपल सा क्वेश्चन है, सुबह कैसे उठे।
सुबह उठने के लिए रात को ठीक टाइम पे सोइए और रात को टाइम पे प्रसाद मत लीजिए लेट, रात को लेट मत प्रसाद लीजिए, मतलब टाइम पे प्रसाद लीजिए। क्यों हो जाता है,
रीडिंग नहीं होती है रात दोपहर में।
ऐसे रीडिंग करने का कोई फायदा नहीं, अगर आप सुबह जब सो रहे हैं जब के समय, तो बेकार रीडिंग है आपकी। ऐसी रीडिंग बंद कर दो, आप 10 बजे सो जाओ। रीडिंग में क्या लिखा हुआ है, ब्राह्म मुहूर्त के समय गुरु अष्टकम का पाठ करना चाहिए, यही लिखा ना रीडिंग में, तो वो तो कर ही नहीं रहे आप, पढ़ते जा रहे हैं बस। हम बुकिश नॉलेज से क्या फायदा है, ये जीवन में नहीं उतार रहे आप। हमने पढ़ा गुरु अष्टकम में लिखा है विश्वनाथ चकित ठाकुर ने, ब्राह्म मुहूर्त के समय उठकर हमें गुरु अष्टकम का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से, जीवन भर करने से, गोलोक धाम में राधा कृष्ण की सेवा की प्राप्ति होगी। दूसरे दिन भी वही पढ़ रहे हैं, तीसरे दिन भी वही पढ़ रहे हैं, रात के 11:30 बजे सो रहे हैं, फिर कैसे उठेंगे, है कि नहीं। डिटर्मिनेशन बढ़ाने के लिए रेगुलेटरी प्रिंसिपल स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा और गंभीर भक्तों का संग प्राप्त करना पड़ेगा और ऐसे वातावरण में रहना पड़ेगा जहां पे आप टाइम पे सो। जैसे पूना मंदिर बड़ा अच्छा उन्होंने किया हुआ है अरेंजमेंट, वो क्या करते हैं 9:30 बजे उन्होंने सेंट्रल कंट्रोल रखा हुआ है बिजली बंद करने का, ठीक है ना, उन्होंने सारा कंट्रोल जो है एक जगह पर रखा है, तो ठीक 9:30 बजे ऑफ कर देते हैं वो, तो पूरे आश्रम में लाइट चली जाती है 9:30 बजे। कोई लाइट जलाना भी चाहेगा तो लाइट नहीं आएगी, पंखा रहेगा सर, उन्होंने कनेक्शन इस तरह से बनाया है और सारे लाइट बंद हो जाएगी, तो आप उठना भी चाहोगे तो क्या करोगे, अंधेरा है चारों तरफ, सोना ही पड़ेगा। तो कई मंदिरों में बहुत स्ट्रिक्टनेस है, 9:30 बजे के बाद आपको जागने देंगे वो लोग, डिसिप्लिन। देखिए समस्या ये है कि हम बचपन से ही ना अनुशासन में नहीं रहे, डिसिप्लिन नहीं रहा हमारे लाइफ में कोई, और बिना डिसिप्लिन के डिसाइपल नहीं बन सकते हम। पहले हमें अनुशासन लाना पड़ेगा अपने जीवन में, जिसके जीवन में अनुशासन है वही बन सकता है शिष्य, नहीं तो हम दीक्षा लेकर भी बेकार अपना जीवन मतलब समय खराब करेंगे, है कि नहीं। दीक्षा लेने से पहले ही शिष्य बनना होगा, जो दीक्षा लेने के बाद सोचेगा शिष्य बनने के लिए वो कभी शिष्य नहीं बन सकता, बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। तो दीक्षा लेने से पहले ही शिष्य बनना होगा, अनुशासित करना पड़ेगा अपने आप को और तब होगा। जैसे हमने देखा है कई लोग जो हमारे वृद्ध लोग हैं जो बचपन से ही प्रातः काल जल्दी उठते रहे हैं, समय पर सोते रहे हैं, उनके लिए आसान है, उनके लिए कोई नया कार्यक्रम ही नहीं है। लेकिन हम जैसे लोग रात को लेट सोते रहे, लेट उठते थे, हम लोग के लिए एक नई कल्पना है, हमें लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, सुबह उठना पड़ता है 3:30 बजे 4 बजे, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। जब तक हम इस्कॉन में आए थे या आए नहीं थे तब तक हमने कभी ब्राह्म मुहूर्त देखा ही नहीं था। हम में से कई लोग हैं यहाँ जिन्होंने ब्राह्म मुहूर्त के दर्शन ही नहीं किए होंगे। हाँ कभी आप कहीं जा रहे हैं यात्रा में तब शायद आपने देखा हो ब्राह्म मुहूर्त का समय, लेकिन वैसे तो हम लोग कभी देखे नहीं। ब्राह्म मुहूर्त के समय तो अधिकांश लोग सो रहे होते हैं, ये आजकल तो खैर अलग बात है, कॉल सेंटर से वापस लौटते हैं। धाम मुहूर्त के सर है लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मंगल आरती में नहीं आते हो। हाँ सोए होते हैं। हाँ ठीक है, आप गाड़ी में सोते हुए आते बेचारे, मैं तो बड़ा दुख होता देखकर उन लोगों को, इतने थके हुए होते हैं वो लोग, पशु की तरह उनको डाल देते हैं गाड़ियों में, बहुत बुरा हाल है। तो इस तरह से हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अपने जीवन को इस तरह से ढाले कि रात को सबसे पहले टाइम पे सोएं, ये बहुत जरूरी है। 10 बजे तक सो जाना चाहिए। जीवा बेगम को सहन करना पड़ेगा। हम लोग को आदत है बड़ी बातें करने की, वाचो बेगम है ना, जीवा बेगम, तो ये सब एगो को सहन करना पड़ेगा। कोई भी ना चाहिए बात करने के लिए, सामने बैठा बात करते हैं, बेकार की बातें किए जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, एक ही टॉपिक पे बात करते जा रहे हैं। 10:30 बज गए, 11 बज गए, चलता जा रहा है प्रवचन आपका, है ना? ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, और प्रेमानंद। हरे कृष्ण।